एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudadventist.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
जो कुछ मांग
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक फिर से परमेश्वर का वचन लेकर आपके सामने आता हूँ। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे जब आप उसके वचनों को सुनते हैं। आइए हम उसके वचन को सुनने से पहले परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हे हमारे महान सशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, तू हमें ग्रहण कर। जब हम इस समय तेरे वचनों को सुनते हैं, हमारे मन और हृदयों को खोल दे और तेरा पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि हम तेरे वचनों को समझ सके और अपने हृदय में लेने सके, अपने जीवन में उसे अपनाने सके। पिता, मेरे हरेक श्रोताओं के संग हो जो तेरे वचन को सुन रहे हैं, उन्हें तेरे वचन से आशीष दे पिता, और मेरे संग हो, तेरे पवित्र आत्मा से अगुवाई कर और मदद कर, ताकि मैं तेरे वचन को सही से बता सकूं। इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। आज का शीर्षक है यीशु की मृत्यु। आज हमारा संवाद यीशु की मृत्यु से मिलेगी। पिलातुस यीशु में कुछ भी दोष नहीं पाया, फिर भी वह लोगों को सौंप दिया कि वे ले जाए और उसे क्रूस पर चढ़ाए, क्योंकि उन पर लोगों का दबाव था और लोग उस पर हट्ठा ठट्ठी मजाक कर रहे थे। वे लोग यीशु पर ठट्ठा हंसी मजाक कर रहे थे, पर यीशु मसीह हमारा मुक्तिदाता सब कुछ खामोश सह रहा था। हमारे एवजी और जमानतदार मसीह के ऊपर हम सब के पापों का बोझ लाद दिया गया था। उसकी गिनती आज्ञा तोड़ने वालों के साथ की गई, ताकि वह हमें आज्ञा उल्लंघन करने के दंड से छुड़ा ले। यह पाप की सोच ही थी जो मनुष्य की एवजी होने के कारण पिता के कोप को उस पर ला रही थी, और उस प्याले को जो वह पीने जा रहा था कड़वाहट से भर दिया और परमेश्वर के पुत्र के हृदय को तोड़ दिया था। बड़े आश्चर्य के साथ स्वर्गदूत मुक्तिदाता के निराशा भरे संताप को देख रहे थे। स्वर्ग के रहने वालों ने उस भयभीत कर देने वाले दृश्य को देखने से अपने मुंह को ढक लिया। प्राणहीन प्रकृति भी अपने मरते और अपमानित होते हुए सृष्टिकर्ता के प्रति सहानुभूति दिखा रही थी। इस अफसोसनाक दृश्य को देखने से सूरज ने इनकार कर दिया। उसकी चमकती किरणें दोपहर के समय ही धुंधला गई थी और अचानक ऐसा लगा कि सूरज छिप गया है। एक काफिन बॉक्स की तरह अंधेरे ने क्रूस को ढक लिया था। लगभग दोपहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा। इस अंधियारे के लिए कोई सूर्य ग्रहण या दूसरा कोई प्राकृतिक कारण नहीं था, जो बिना चांद या सितारों के आधी रात जैसा लग रहा था। यह एक चमत्कारिक गवाही थी जो परमेश्वर की ओर से दी जा रही थी, ताकि इसके बाद आने वाली पीढ़ियों का विश्वास पक्का हो सके। उस गहरे अंधकार में परमेश्वर छिपा हुआ था। वह अंधेरे को अपना निवास बनाता है और अपनी महिमा को मनुष्यों की आंखों से छिपाता है। परमेश्वर और उसके पवित्र स्वर्गदूत क्रूस के आसपास मौजूद थे। पिता अपने पुत्र के पास था, फिर भी उसकी उपस्थिति प्रकट नहीं की गई थी। यदि उसकी महिमा बादलों को चीरकर चमक उठी होती, तो जितने भी मनुष्य उस समय इस घटना को देख रहे थे, सब के सब नाश हो गए होते, और उस भयानक घड़ी में परमेश्वर की उपस्थिति से मसीह को कोई शांति नहीं मिली होती। वह रसकुंड में अकेले ही चलता रहा और मनुष्य में से कोई एक भी उसके साथ नहीं था। अपने प्रिय पुत्र के मनुष्य रूप में उसके अंतिम संताप के गहरे अंधकार में परमेश्वर ने अपने आप को ढक लिया था। जितनों ने मसीह को कष्ट भोगते हुए देखा था, वे सब उसकी ईश्वरीयता के कायल हो गए थे। इंसान के रूप में जिस चेहरे को देखा था, वह कभी ना भूलने वाला चेहरा था। जिस प्रकार से कैन का चेहरा उसके हत्यारे होने को प्रकट कर रहा था, उसी प्रकार से मसीह का चेहरा उसकी निर्दोषिता, उसकी शांति प्रियता, उसकी दयानता और परमेश्वर की छवि को प्रकट कर रहा था, परंतु उस पर दोष लगाने वालों ने उसके स्वर्गीय छाप पर कोई ध्यान नहीं दिया। पीड़ा की उस लंबी घड़ियों में भीड़ ने मसीह को उपहास करने वाली आंखों से ही देखती रही। अब परमेश्वर की चादर के नीचे उसे छिपा लिया गया था। ऐसा लग रहा था कि कलवरी पर कब्रिस्तान का सन्नाटा छा गया है। एक अनजान सा आतंक उस भीड़ पर छा गया था जो क्रूस को घेरे हुए थी। लानत, मलामत करना, हंसी उड़ाना, चिढ़ाना, ताना मारना, सभी कुछ लगभग धीमा पड़ गया था। स्त्री, पुरुष और बच्चे सभी लोग मुंह के बल जमीन पर गिरे हुए थे। बादलों में से रह रहकर बिजली चमक उठती थी, जिससे क्रूस और उस पर टंगा उद्धारकर्ता दिखाई पड़ जाते थे। याजक, शास्त्री, अधिकारी, न्यायाधीश और भीड़ सभी ने सोच लिया कि उन्हें बदला मिलने का समय आ गया है। कुछ देरी के बाद कुछ लोग फुसफुसाए कि यीशु अब क्रूस पर से नीचे उतर आएगा। कुछ लोग अपनी छातियों को पीटते और विलाप करते हुए नगर की ओर अपने घर की राह पकड़ लिए। तीसरे पहर लोगों पर से अंधेरा छंट गया, परंतु मुक्तिदाता पर अभी भी छाया हुआ था। यह पीड़ा और आतंक का प्रतीक था जिसका बोझ यीशु के हृदय पर पड़ रहा था। जो अंधेरा क्रूस को घेरे हुए था उसे किसी मनुष्य की आंख भेद नहीं सकती थी, और ना ही कष्ट उठा रहे मसीह के आत्मा पर छाए हुए गहरे अंधेरे को कोई भेद सकता था। ऐसा लगता था कि क्रोध से भरकर बिजली उस क्रूस पर टंगे हुए पर टूट पड़ेगी। और तब यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जब बाहरी अंधेरा मुक्तिदाता पर छा गया तो बहुतों ने कहना आरंभ कर दिया, स्वर्ग का बदला उस पर टूट पड़ा है, परमेश्वर के कोप का बांध टूटकर उस पर फट पड़ा है, क्योंकि वह परमेश्वर के पुत्र होने का दावा करता था। परंतु बहुतों ने जो उस पर विश्वास करते थे उसके निराशजनक पुकार को सुना। उनकी अपनी आशा जाती रही, यदि परमेश्वर ने यीशु को छोड़ दिया है तो फिर उसके अनुयायी किस पर भरोसा करें। मसीह की दुखित आत्मा पर से जब अंधकार उठ गया तब उसने शारीरिक पीड़ा महसूस किया और कहने लगा, मैं प्यासा हूँ। एक रोमी सिपाही उसके सूखे होठों को देखकर द्रवित हो गया और उसने एक स्पंज को सिरके में डुबाकर जुफे पर रखकर उसके मुंह से लगा दिया। परंतु याजक उसके इस कष्ट का मजाक उड़ाया। जब पूरी धरती पर अंधेरा छा गया तो वे लोग बहुत ही डर गए थे, और जब वह आतंक कम हुआ तो सोचने लगे कि यीशु अभी भी उनसे अपने आप को बचा सकता है। उसकी उन बातों को एली एली लमा सबक्तनी का उन्होंने गलत अर्थ निकाला था। बड़ी कड़वाहट भरे और उपहास करते हुए शब्दों में उन लोगों ने कहा, देखो यह एलिया को पुकारता है। उसकी पीड़ा को कम करने के अंतिम अवसर को भी मानने से उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, ठहर जाओ, देखे कि एलिया उसे उतारने के लिए आता है कि नहीं। परमेश्वर का निर्दोष पुत्र क्रूस पर लटका हुआ है। कोड़ों की मार से उसकी पीठ घायल है और वे हाथ जो सदा ही आशीष देने के लिए उठते थे उस लकड़ी के लट्ठे में कीलों द्वारा ठोक दिए गए हैं। वे पैर जो प्रेम की सेवा करने के लिए कभी थकते नहीं थे काठ के क्रूस पर जड़ दिए गए हैं। वह प्रतापी राजकीय सिर कांटों के मुकुट से लहूलुहान है और वे थरथराते होंठ अफसोस प्रकट कर रहे हैं, और वह है कि इन सब बातों को सहन कर रहा है जो लहू की बूंदे उसके माथे, हाथों और पैरों से टपक रही हैं। वह पीड़ा जिसने उसके चेहरे की छवि को बिगाड़ दिया है और अतिशय संताप से भरी उसकी आत्मा पिता के छिपा लिए चेहरे के कारण प्रत्येक मनुष्य से कहती है कि यह तुम ही हो जिसके लिए परमेश्वर का पुत्र पाप के बोझ को सह रहा है। तुम्हारे लिए ही उसने मृत्यु के साम्राज्य का नाश किया और स्वर्ग का फाटक खोल दिया। वह जिसने समुद्र की आंधी को शांत कर दिया और तूफानी लहरों पर चलकर दिखलाया, जिसने बीमारियों को भाग जाने और शैतान को कांपने पर मजबूर कर दिया, जिसने अंधे को रोशनी दी और मुर्दों को जीवित कर दिया, वह अपने आप को क्रूस पर बलिदान होने के लिए प्रस्तुत कर देता है। यह सब इसलिए किया कि तुमसे प्रेम करता है। वह संसार के पाप को उठा ले जाने वाला ईश्वरीय न्याय का सम्मान करता है और इसलिए तुम्हारी खातिर स्वयं पापी बन गया। देखने वालों ने खामोशी के साथ भयानक दृश्य के अंत को देखा। यद्यपि सूरज दिखाई देने लगा था, फिर भी क्रूस पर अंधेरा छाया हुआ था। याजक और अधिकारी यरूशलेम की ओर देखने लगे और देखो, घना बादल यहूदियों के मैदानों और यरूशलेम नगर पर ठहरा हुआ था। धार्मिकता का सूरज, संसार की ज्योति, एक बार के अपने प्रिय नगर पर से अपनी किरणों को समेट रहा था। परमेश्वर के कोप की बिजलियां बर्बाद होने वाले शहर के खिलाफ मुड़ गई थीं। अचानक क्रूस पर छाया हुआ अंधेरा हट गया और साफ तौर से नरसिंह की आवाज के समान ऐसा लगा कि सारी सृष्टि में गूंज उठेगी। यीशु चिल्ला पड़ा, पूरा हुआ। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। एक ज्योति ने क्रूस को घेर लिया और मुक्तिदाता का चेहरा सूरज के प्रकाश जैसा महिमा से चमक उठा और तब उसने अपना सिर छाती की ओर झुका लिया और प्राण त्याग किया। उस भयानक अंधेरे में लगभग परमेश्वर द्वारा त्यागा हुआ मसीह ने इंसान के संताप के प्याले का अंतिम तलछट खाली कर दिया। उन भयानक घड़ियों में अपने पिता द्वारा स्वीकार किए जाने वाली गवाही को अब तक उसे दी गई थी उस पर निर्भर रहा। वह अपने पिता के स्वभाव से खूब परिचित था। वह उसके न्याय और दया तथा महान प्रेम को जानता था। विश्वास के द्वारा वह उसमें स्थिर रहा, जिसकी आज्ञा का पालन करने में उसे प्रसन्नता होती थी, और समर्पण की भावना से उसने अपने आप को परमेश्वर को अर्पित कर दिया और अपने पिता से अलग हो जाने की सोच समाप्त हो गई थी। विश्वास द्वारा मसीह विजयी हो गया था। इस धरती ने इससे पहले कभी भी ऐसे दृश्य को नहीं देखा था। लोगों की भीड़ सन होकर अपनी सांसें रोके मुक्तिदाता पर नजरें टिकाए खड़ी थी। फिर पृथ्वी पर अंधेरा छा गया और गड़गड़ाहट भरी आवाज और बिजली की गरज के समान आवाजें सुनाई देने लगी। एक बहुत बड़ा भूंडोल आया। लोग एक दूसरे पर गिरे पड़ रहे थे। चारों ओर गड़बड़ी और अफरा तफरी मच गई। लोग घबरा गए थे। पास के पहाड़ों से चट्टाने खिसक कर मैदानी क्षेत्रों में फैल गईं। कब्रें तड़क कर खुल गई और मुर्दे उनमें से बाहर निकल आए। ऐसा लग रहा था कि पूरी सृष्टि ही धूल में मिल जाएगी। याजक, अधिकारी, सैनिक, मसीह पर आरोप लगाने वाले और दूसरे लोग भी आतंकित होकर मुंह के बल जमीन पर गिर पड़े थे। जब ऊंची आवाज में मसीह के ओठों से निकला पूरा हुआ, उस समय मंदिर में याजक लोग सेवकाई का कार्य संपन्न करा रहे थे। यह शाम के बलिदान का समय था। मेमना, जो मसीह का प्रतीक था, बलिदान करने के लिए भीतर लाया जा चुका था। अपने सुंदर याजकीय वस्त्र पहने हुए याजक अपनी छुरी ऊपर उठाए खड़ा था, जिस प्रकार से इब्राहिम अपने बेटे की बलि चढ़ाने के लिए तैयार खड़ा था। बड़ी दिलचस्पी के साथ लोग उसे देख रहे थे, परंतु भूंडोल हुआ और पृथ्वी कांप उठी और यहोवा स्वयं वहां पर हाजिर था। एक अनदेखे हाथों द्वारा फटने की आवाज के साथ मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे की ओर कर से फट गया और एक समय जो परम प्रधान परमेश्वर का स्थान माना जाता था वह खुल गया और सब लोग उसे देखने लगे। इसी स्थान पर सेकिना का वास था। यहीं पर परमेश्वर अपनी महिमा को मर्सी सीट पर प्रकट करता था, प्रायश्चित का ढक्कन पर प्रकट करता था। पूरे मंदिर में इस पर्दे को, जो पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान को एक दूसरे से अलग करता था और लोगों के पापों के प्रायश्चित के लिए वर्ष में एक बार महायाजक उसे खोलता और उसमें प्रवेश करता था। परंतु देखो, यह पर्दा अब दो भागों में फट गया था। अब इस धरती पर परम पवित्र स्थान की कोई आवश्यकता नहीं रही। सभी कुछ गड़बड़ी और आतंक के घेरे में आ गया है। याजक मेमने को वध करने के लिए तैयार था, परंतु हड़बड़ाहट में उसके हाथ से छुरी छूटकर गिर जाती है और मेमना भाग जाता है। अभी तक जो प्रतीक था वह वास्तविकता में बदलकर परमेश्वर के पुत्र के रूप में बलिदान हो गया, महान बलिदान कर दिया गया था। अब परम पवित्र स्थान का मार्ग खुल गया था। प्रत्येक मनुष्य के लिए एक नया जीवन मार्ग तैयार कर दिया गया था। अब पाप से भरे और शोकित इंसानियत के लिए महायाजक की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं रही। इसके बाद स्वर्गीय मंदिर में मुक्तिदाता को महायाजक और वकील दोनों का कार्य करना था। ऐसा लगा कि जीवित आवाज आराधना करने वालों से कह रही हो, अब से पाप के लिए सभी बलिदान और भेंटे समाप्त कर दी गई हैं। परमेश्वर का पुत्र अपने वचनों के अनुसार आया, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय मंदिर में बकरों और बछड़ों के लहू द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। इसे हम इब्रानियों 10 का 7, 9 और 9 का 12 में पाते हैं। यहाँ पर हम पाते हैं प्यारों कि यीशु मसीह हमारे लिए परमेश्वर का मेमना होकर बलिदान हुआ। हम इस दुनिया में, इस पापी दुनिया में रहते हैं और पापी काम करते हैं, लेकिन यीशु मसीह हम पर दया किया और हमारे बदले में दुख सहा और मृत्यु को भी अपनाया कि उसके मृत्यु से हम बचाए जा सकते हैं, उसके बलिदान से हम नया जीवन प्राप्त कर सकते हैं। वही हमारा आशा है, वही हमारा एकमात्र उम्मीद है और उसके द्वारा हम उद्धार पाते हैं। आइए हम उसे ना छोड़े, आइए हम उसे पकड़े और हम उसे अपनाएं और उसे अपनाते हुए अपने जीवन को बचाएं। परमेश्वर का आशीष आप सबों को मिले। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे इस वचन के द्वारा, और आइए हम उससे प्रार्थना करें। हे हमारे महान पवित्र परमेश्वर पिता, हम तेरे लोग तुझ में विश्वास करके तेरे पास आते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो तूने अपने पुत्र को हमारे उद्धार के लिए दिया। हमारे पापों के लिए वह मरा पिता, वह तो निर्दोष था, उसमें कुछ कलंक नहीं था, परंतु वह हमारे बदले में मृत्यु अपनाया कि हम उसके मृत्यु से जीवन पा सकते हैं, उसके द्वारा हम अनंत जीवन पा सकते हैं। पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस बहुत बड़ा तोहफा के लिए। हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम के लिए, तेरे इस बड़ा बलिदान के लिए। पिता परमेश्वर, हमारे मनों को छुओ और हमारे मनों में तेरा प्रेम भर दे और तेरे पवित्र आत्मा काम करे कि हम तुझे अपना ले और अपना जीवन को तुझ में समर्पित कर दे और आज से हमेशा के लिए अनंत काल तक तुझ में जीने सके। पिता, हमारे हरेक श्रोताओं को आशीष दे, मुझे आशीष दे पिता, और हम सबों को तेरे निकट ला। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुना दया से ग्रहण कर, आमीन।
महिमा हो तेरी, महिमा 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 महिम महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833221 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें।
तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।